हेलो हाय, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। भाई जो बड़े हैं उनको मेरी तरफ से प्रणाम और जो छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार दुलार। आपका दोस्त, आपका अजीज, आपका प्रशांत मिश्रा आपके सामने उपस्थित है एक नई कहानी लेकर के। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे दोस्त कल कहानी का इंतजार करते रह गए और मैं कहानी नहीं सुना पाया था, तो उसकी खानापूर्ति आज मैं दो कहानियों के रूप में करूंगा। एक कहानी मैं अभी आपको सुनाऊंगा और दूसरी कहानी अपने नियत समय शाम। दोस्तों आज की जो कहानी है ये कहानीकार छाया अग्रवाल जी की कहानी है, एक थी अनु। जहां तक छाया अग्रवाल जी का ताल्लुक है, ये बरेली की रहने वाली हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, बहुत सारी इनकी कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी हैं, ये आकाशवाणी के लिए भी काम करती हैं, साथ में इनकी बहुत सारी पुस्तकें सफलता का नया कीर्तिमान गढ़ रही हैं। उन्हीं किताबों में से एक है कहानी एक थी अनु। कहानी बड़ी है, एक बार में कह पाना संभव न होगा, सो ये कई भागों में आपके सामने आएगी। शुरुआत अभी करते हैं। अनुप्रिया ने मोबाइल उठाकर आदित्य का नंबर डायल किया है। घंटी जा रही है पर फोन नहीं उठ रहा है। इसका मतलब या तो वो व्यस्त है या फिर फोन से दूर है, वरना अनुप्रिया का फोन वो तुरंत उठाते हैं। दरअसल आदित्य उसके एक साहित्यकार मित्र हैं। अनुप्रिया की मुलाकात उनसे एक साहित्य सम्मान समारोह में हुई थी। अब कहने को तो वो मुलाकात छोटी और औपचारिक थी, मगर मित्रता के लिए काफी थी। उसके बाद मिलना तो दोबारा नहीं हुआ, मगर फोन पर बातों का सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे मित्रता का सूत जैसा धागा कब मांझे की तरह मजबूत हो गया पता ही नहीं लगा। उसके बाद साहित्य चर्चा तो होती ही है, कभी कभार निजी और घरेलू बातें भी हो जाया करती। कारण भी यही है कि वो निहायत भावुक और कमजोर है। यह बात आदित्य को नागवार गुजरती। वो चाहते हैं कि उसकी विवेक की रस्सी इतनी मजबूत हो जाए जिसे पकड़कर वो बुलंदियों को छू ले। होता भी यही है, हमेशा आदित्य के शब्दों की प्रतिध्वनि से उसके कानों में गूंज कर उल्लास और उत्साह को जन्म देती रहती है, और यथार्थ की खुरदरी जमीन का दर्द वो अपनत्व के मेघ तले भूलती रही। प्रश्नों के अंकुर से जब जब नई कोपले फूटी, उसे आदित्य की जरूरत एक माली की तरह हुई, और वो हमेशा कुशल माली ही बने। राय मशवरे के साथ साथ जब भी किसी जटिल पहलू या समस्या में घिरी, हमेशा आदित्य ने उसका समाधान चुटकियों में किया। उन्होंने लेखन के साथ साथ जिंदगी की बारीकियों से भी रूबरू कराया। एक कमजोर पौधे को वृक्ष का रूप दिया है। कठोर और पथरीले रास्तों को सहजता से सुगम बनाने वाले आदित्य हमेशा उसकी मदद को सहर्ष तैयार रहे। यही वजह है कि वो उनका सम्मान दिल से करती है। चार बरस पुरानी मित्रता में महज एक ही मुलाकात है, पर कभी नहीं लगा कि यह परिचय छोटा है। भावनाओं का सर जब शाब्दिक लिबास ओढ़कर खड़ा होता है तो उसे किसी देह की जरूरत नहीं होती, वो संपूर्ण सशक्त और अडिग होता है। आदित्य हमेशा उसको अनु कहकर बुलाते हैं। उनका इस तरह बोलना अनुप्रिया को बहुत अच्छा लगता है। जब भी वो उसको इस नाम से पुकारते हैं वो खुशी से गदगद हो जाती है। उसने सुना है कि जब कोई किसी से बहुत प्यार करता है तो नाम बदल देता है। ओह, फोन लग चुका है, उधर से आवाज आई। हेलो दोस्त, कैसी हो? मैं ठीक हूं सर, आप कैसे हैं? हमेशा की तरह एकदम मस्त। पीछे से शोर सुनाई पड़ रहा है। वो सोच रही है कहीं गलत समय तो फोन नहीं कर लिया। शिष्टाचार के तहत उसने पूछा, सर कहीं एक गलत समय तो नहीं है? अरे बोलो अनु, आप व्यस्त हैं क्या? अरे नहीं व्यस्त हूं, एक पुस्तक के विमोचन में आया हूं। अब रहने दीजिए, बाद में बात करती हूं। अरे नहीं भाई, 15 मिनट में बिल्कुल फ्री हूं, अभी लंच चल रहा है। दिमाग में उलझन है, एक कहानी पर चर्चा करनी है। नई कहानी शुरू की है? हाँ शुरू तो की है, मगर मगर क्या? अरे भाई सवाल पूरा करो और बधाई लो। शुक्रिया सर। आप घर कब तक पहुंचेंगे? अरे बाबा तुम बात पूरी करो, अभी 10 मिनट है दोस्त। हमेशा याद रखो, सवाल और काम अधूरे नहीं छोड़ने चाहिए। कहानी आगे नहीं बढ़ती, क्या करूं, होता है कभी कभी। बताओ विषय क्या है? मेरे जीवन की अंतिम कहानी। ये कैसा विषय है? स्त्री पर है क्या? जी यही समझ लीजिए। कहो। राधा उदास है, आंखों में आंसू भरे हैं। अरे भाई राधा की जगह रुक्मणी कर दो। आपको मजाक सूझ रहा है और मैं परेशान हूं? अनुप्रिया ने नाराजगी जताई। अच्छा दोस्त आगे बताओ। राधा उदास है, आंखों में आंसू भरे हैं। उसने गोपाल से यह उम्मीद नहीं थी। जब से क्या है एक फोन भी नहीं किया है। शायद वो मुझे भूल गया है या किसी और को चाहने लगा है। राधा की आंखों में आंसू क्यों है? क्योंकि वो प्रेम करती है। गोपाल की आंखों में आंसू क्यों नहीं है? शायद उसे प्रेम की परवाह नहीं है। तभी बोला था कि राधा की जगह रुक्मणी कर दो, फिर वही मजाक। अरे ये मजाक नहीं है दोस्त, अपने विषय में बदलाव लाओ। क्या सचमुच बदलाव आ चुका है? बिल्कुल, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। अब ये बताओ क्या जामुन के पेड़ पर आम आ सकते हैं? हां अगर जामुन की जड़ें बदल दी जाएं तो। जड़ें बदलना आसान नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। आंधियां कमजोर को ही उखाड़ती हैं, कुछ पौधे आंधियों में भी तने रहते हैं। वो कम होते हैं पर होते हैं ना। हां पर उनका क्या जो उजड़ गए? उन पौधों से सीख लो जो खड़े हैं। इतना आसान नहीं है, आसान बनाया जा सकता है। पहले के लिए हौसला चाहिए। बेशक अब मेरी कहानी को दिशा मिल रही है। तुम्हारे घर के आंगन में जो पेड़ है उसका फल तुम्हारी राह देख रहा है, जाओ। मुझे फल और रास्ता दोनों दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे खुशी है। अच्छा मैं चल रहा हूं, 15 मिनट पूरे हुए, शाम को बात करते हैं। थैंक यू सर, अब मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही हूं। मुझे इंतजार है शाम का, नई कहानी का। बाय सर। गुड बाय दोस्त। अनुप्रिया पेड़ के नजदीक खड़ी है, पका हुआ फल नीचे झुक गया है, अब वो पकड़ से दूर नहीं है। हर रास्ते की कोई ना कोई मंजिल होती है और हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता। अतः अंदर ही अंदर कहानी बदलाव के लिए मथी जा रही थी और वो अब पहले की अपेक्षा सहज है। एक गीत जो लगातार चहलकदमी कर रहा है लिखा जाता है। तुम्हारा साथ यकीनन बहुत भाता है, तुम्हारे आने से मन हरा हो जाता है। तुम रह नहीं सकते मेरे बगैर, तुम्हारे चेहरे से पता चल जाता है। रमा जरा 2 कप कॉफी भेजना प्लीज, अनुप्रिया ने जोर से आवाज लगाई। अभी लाती हूं दीदी। रमा 5 मिनट में कॉफी बना लाई। लो दीदी फिर 2 कप, एक वापस ले जाऊं? अनुप्रिया ने फीकी मुस्कान बिखेरी है, इस बार शब्द मौन है। नहीं रहने दे। कब भैया जी ने आपके साथ बैठकर कॉफी पी है? हैं? मुझे तो याद नहीं, फिर भी आप 2 कप ही बनवाती हो, रमा ने अपना गुस्सा जताया। तू रहने दे, जा बगीचे के पौधों को पानी दे दे। जाती हूं। पर मुझसे आपका यह अकेलापन देखा नहीं जाता, इसीलिए कह देती हूं। अनुप्रिया ने अपनी उदासी को मुस्कुराहट में बदल लिया। वो नहीं चाहती है कि रमा को उसकी वजह से दुख पहुंचे, और फिर उसने गलत भी क्या कहा है, वही तो अब तक मर्यादित कठरी को सीने से लगाए बैठी है। आनंद के अंतरंग पल जो वो जायज अधिकार से जीकर भूल गया, क्यों नहीं भूल पाती है वो उन्हें, जिन पर उसका अब कोई अधिकार ही नहीं। खुद पर हंस पड़ी है वो। सुन, ये काफी तू पी ले और यहीं बैठ मेरे पास। रमा काफी पी रही है। अनु बगीचे में अपनी पसंद की टहनी को ढूंढ रही है। कुछ कमजोर टहनियों के टूटने की टीस है और कुछ नई कोपले फूटने पर मधु रिझने को अधूरा है। वो अपने बगीचे के एक एक पत्ते को पहचानती है। उसका सारा वक्त बगीचे से सटे हुए बरामदे में लेखन के साथ गुजरता है। यही कारण है कि उसकी अपने पेड़ पौधों से नजदीकी काफी बढ़ गई है। शाम हो चुकी है। फोन अपने समय से घनघना उठा है। लो, आदित्य सर का फोन आ गया है। वो अपने घर पहुंच गए होंगे। कितना ख्याल है उन्हें मेरा। इन्हीं प्रेम मिश्रित सवाल जवाबों के उपवन में वो खिल उठी। दोस्तों, बाकी का भाग लेकर के मैं शाम तक उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, हंसते रहें, गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें। इसके अगले भाग को लेकर के शाम तक आपका दोस्त प्रशांत मिश्रा फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।